क्योंकि इस महीने में भगवान कृष्ण ने उद्धव अर्जुन को भगवद गीता बोली थी। इस महीने दिसंबर के महीने में एक एकादशी आएगी, अभी उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, अभी आएगी, और उस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया है। तो इस महीने भगवद गीता को सुनना या पढ़ना या उसको खरीदना या किसी को गिफ्ट देना बहुत पुण्यशाली होता है, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग भगवद गीता पर ही चर्चा करेंगे। सो भगवद गीता क्या है और हम भगवद गीता पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? कितने सारे शास्त्र हैं? पहली बात, शास्त्र होता क्या है? सो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, एटलीस्ट हिंदू होते हुए इस्लाम में एक शास्त्र है, उसको कहते हैं कुरान, और क्रिश्चियंस का एक शास्त्र है, वो है बाइबल, और हिंदुओं का शास्त्र क्या है पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र हैं यहां, इसलिए लोगों को पता नहीं कि कौन सी किताब पढ़े कौन सी नहीं पढ़े। और वैसे भी शास्त्र की जब बात आती है तो मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था तो मैंने पूछा, शास्त्र पढ़े हैं आपने? सो वो आदमी मुझसे बोलता है कि ये कौन से अंकल का नाम है, छोटा बच्चा छोटा मतलब बड़ा लड़का था। लोगों को ये भी नहीं पता कि शास्त्र का मतलब क्या है, दुनिया बदल चुकी है, शायद हमारे जो वृद्ध लोग हैं या लोग हैं वो अलग जमाने के हो गए हैं, अब भारत भारत नहीं रहा है, कुछ और हो चुका है, और उसके जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार हम ही है, क्योंकि हम लोगों ने ये ज्ञान दूसरों को नहीं दिया, और इसकी वजह से जो हमारी नई पीढ़ी है उनको कुछ भी नहीं पता। एक लड़के को मैंने पूछा कि रामायण किसने लिखी है, तो कहता है अर्जुन ने, उसको नहीं पता। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता, जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था मुझे नहीं पता था गीता क्या होती है, मुझे नहीं लगता कि गीता किसी ने पढ़ी है। आप लोगों ने गीता पढ़ी है या किसी ने पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा नहीं, पढ़ने का मतलब स्कूल की किताब की तरह, वो शायद नहीं पढ़ी होगी। पढ़ने का मतलब है टीचर से पढ़ना, वो शायद नहीं पढ़ी होगी। सो हमें गीता को प्रॉपरली जैसे लॉ बुक होती है वैसे पढ़ना होता है, कानून की किताब की तरह। ये किताब कानून की किताब है, ये देश का कानून नहीं है, ये जीवन का कानून है। सो 18 अध्याय और 700 श्लोक भगवद गीता के। वैसे तो मैं कहीं पूरे भारत में प्रवचन करता हूं और बहुत ही कम लोग मिलते हैं मुझे जिन्होंने गीता पढ़ी हो, मगर वेल शास्त्र क्या है पहले हम ये समझते हैं। शास्त्र मतलब ऋग सामयजो अथर्व। शास्त्र क्या है? स्कंद पुराण में शास्त्रों में परिभाषा है कि शास्त्र क्या होता है। हर किताब शास्त्र नहीं होती जो मार्केट में मिलती है, और ना ही हमें हर किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी किताब पढ़ेंगे भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी गई हैं, हमें समझ नहीं आएगा जीवन का लक्ष्य क्या है। स्कंद पुराण में लिखा है कि शास्त्र क्या है, शास्त्र मतलब ऋक् साम यजुर अथर्वश्च, ऋक् साम यजुर अथर्व वेद, इतिहास पुराणश्च, इतिहास मतलब रामायण महाभारत, 18 पुराण और 108 उपनिषद जो वेदों का भाग है, इसको हम शास्त्र बोलते हैं। इसके सिवाय कोई भी किताब है वो शास्त्र नहीं होती। गीता किस में आती है? गीता महाभारत का भाग है, और गीता इन शास्त्रों का सबका सार है, इसलिए हम गीता पे चर्चा कर रहे हैं। तो गीता के महात्म्य में लिखा है, इस किताब में शुरू में लिखा है, शंकराचार्य ने लिखा है कि सर्व उपनिषद गावो दोगदा गोपाल नंदना, सारे उपनिषदों का सार गीता है। शिवजी कह रहे हैं पार्वती से वैष्णवी तंत्र में कि पार्वती जिसने गीता नहीं पढ़ी और जिसने शायद सारे शास्त्र पढ़े हों मेरे अनुसार वो बालक है। वो बालक ही नहीं, बेवकूफ है, क्योंकि सारे शास्त्र ज्ञान है और गीता विवेक है। हो सकता है कि आदमी के पास सारा ज्ञान हो मगर विवेक नहीं है, तो उस ज्ञान से अज्ञान ही प्रकट होता है। और विवेक ज्ञान में फर्क होता है। ज्ञान है कि आग में गर्मी है, आग जलाती है, बच्चे को आग दोगे तो वो फूंक देगा, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है, ज्ञान है बस कि आग जलाती है। मगर विवेक क्या है, उस अग्नि को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेना, वो विवेक है। सो शिव जी कह रहे हैं पार्वती अगर कोई सारे शास्त्र पढ़ लेगा, किसी ने शास्त्र पढ़े नहीं वो तो मूर्ख है, वो अज्ञानी भी नहीं मूर्ख है। जिसने शास्त्र नहीं पढ़े वो मूर्ख भी नहीं, वो अज्ञानी भी नहीं, वो पागल है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विक्रमा, कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं कि मूढ़ा नानुपश्यंती, मूढ़ा मतलब बेवकूफ है, वो मनुष्य नहीं है। क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं कि लोग हमसे पूछते हैं क्या बिना शास्त्र पढ़े हम भगवान को नहीं जान सकते, कृष्णा क्या कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे बिना शास्त्र पढ़े या शास्त्रम विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारता, 16वें अध्याय का आखिरी ऑलमोस्ट आखिरी श्लोक, जो शास्त्रों को छोड़ के अपने मन से काम करता है, अपने मन से पूजा भी करता है, उसका क्या होता है। आप कहोगे मैं पूजा तो कर रहा हूं, शास्त्र नहीं पढ़े तो उसमें क्या है। कृष्णा कह रहे हैं सॉरी टू से, मुझे खेद है आपसे बताने के लिए कि अगर आप पूजा कर रहे हो आपने शास्त्र नहीं पढ़े तो आपकी पूजा तमोगुण में है। पूरा 17वां अध्याय इसी पर चर्चा हो रही है, तमोगुण में। आप में आस्था तो है भगवान में मगर मेरे अनुसार वो आस्था अंधेरे में, क्योंकि वो आस्था बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के आस्था अंधी होती है। वो आज किसी के लिए होती है, कल किसी के लिए, परसों किसी के लिए, वो उस आस्था में फल की इच्छा होती है, उस आस्था में इच्छा होती है सुख और शांति की, मुझे चाहिए कुछ नहीं, वो आस्था बहुत जल्दी टूट जाती है जो बिना शास्त्र ज्ञान के होती है। कृष्णा कह रहे हैं मेरी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस आस्था से न सिद्ध माँ बाप न होती, न सुखम न पराम गतिम। ऐसी आस्था से जिसमें शास्त्र ज्ञान नहीं है उससे ना सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न परलोक मिलता है, और केवल एक ही चीज मिलती है, उसका नाम है नरक और मृत्यु। सो भारत में कुछ लोगों को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ लोगों को है ज्ञान तो वो भी विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, गलत ज्ञान है चीजों का, क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं शास्त्र क्या होते, और अगर हमें पता भी लग जाएगा शास्त्र क्या है तो इतने सारे शास्त्र पढ़ेगा कौन। चार वेद, ऋग सामयजुरथर, ऋग्वेद में 1 करोड़ मंत्र हैं, क्या करोगे। ऋग्वेद पहले तो संस्कृत ही नहीं आती हमें, वो कैसे पढ़ेंगे, और वैदिक संस्कृत अलग होती है, यहाँ पे टीचर होंगे, लौकिक संस्कृत अलग है, लौकिक संस्कृत तो आप पानी नीचे सीख लोगे, और मतलब वैदिक संस्कृत पढ़ने के लिए पानी में ही और वैदिक संस्कृत और समझनी होती है, तो कैसे पढ़ेंगे क्या होगा। इसलिए लोग सोचते हैं चलो भाई ठीक है, एक दो सिद्धांत पे काम करता है संसार, या तो किसी की सुनो ही मत भैया, ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, थोड़ा मंदिर आओ पूजा करो, सुनो मत किसी की, घर चले जाओ। एक ही सिद्धांत है समाज का। या दूसरा सिद्धांत है सबकी सुनो मगर करो मन की, यह सिद्धांत है जो मंदिर में आते हैं लोग और जो प्रवचन सुनते हैं, सबकी सुनो अच्छे हैं सब मगर अपने मन की करना, कृष्णा गीता में कह रहे हैं 16वें अध्याय में। सो क्या करें क्या ना करें, शुरुआत इसलिए कृष्णा ने 5000 साल पहले अर्जुन को गीता बोली, क्योंकि सबका दुर्भाग्य है कि किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी आयु नहीं है सारे शास्त्र पढ़ने के लिए, वेद समझने के लिए। तो कृष्णा ने अर्जुन को गीता बोल दी, ठीक है। इस गीता में 18 अध्यायों में 700 श्लोक में भगवान ने विवेक दिया है, भगवान निर्णय दे रहे हैं। गीता का दो नाम है, निर्णय शास्त्र। गीता निर्णय देती है, वेद ज्ञान देता है। वेद कह रहा है ओके अग्नि की स्तुति, वरुण देव की स्तुति वेदों में है, वायुदेव की स्तुति सब है, मगर गीता निर्णय दे रही है कि नहीं, देवी देवताओं की पूजा करने से देवलोक जाओगे। कौन सा श्लोक है किसी को पता है, आप लोगों ने गीता पढ़ी है, कौन सा श्लोक है, नहीं, गीता मत भूलना ना, अपना नाम भूलना ना, गीता भूल गए तो प्रॉब्लम है। गीता तो ऐसे याद होनी चाहिए कि अगर नींद में भी उठा के कोई पूछ ले कि इस अध्याय का कौन सा श्लोक है, आपको पता होना चाहिए। शास्त्रों में तो लिखा है कि गीता, अगर मृत्यु के समय सिर्फ गीता बोल दोगे, बस गीता, और मर जाओगे तो भी मोक्ष मिल जाएगा। पढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। जो गीता भूल गया वो भगवान को नहीं, अपने आप को ही भूल गया। सो यान्ति देवा व्रता यान्ति, गीता में श्लोक है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाएगा। पितृ यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोग जाएगा। भूतान यान्ति भूतेज्य, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाएगा। और जो मेरी पूजा करता है, मद यान्ति, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आएगा। कृष्ण ने गीता में निर्णय दे दिया कि देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, मेरी पूजा करो, सिर्फ मैं भगवान हूं। इसलिए गीता को निर्णय शास्त्र कहते हैं, निर्णय। गीता का एक और नाम है पंचम वेद, वेदा नाम वेदा पंचम, पंचम वेदा नाम वेदा। सारे वेदों का जो सार है वो गीता में, और गीता को पंचम वेद कहते हैं। और गीता इतनी स्पेशल है कि गीता में वो सब कुछ है जो सारे शास्त्रों में है, और वो भी है जो सारे शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र आधिक्य, शास्त्र अगर एक तुलने में हम शास्त्र रखें सारे और एक में गीता रखें तो गीता भारी पड़ जाएगी। सो कितना आसान है, अब आपको संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं है, अब आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक किताब पढ़नी है, गीता। और गीता पढ़ने से आप वो जान जाओगे जो सब जगह है सारे शास्त्रों में, और वो भी जान जाओगे जो सारे शास्त्रों में नहीं है। सो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, किसने गीता पढ़ी है? दोबारा से पढ़िए। हमारे हिसाब से आधा पढ़ना गीता नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं आधी गर्भवती औरत क्या होता है, कुछ होता है? मैं गर्भवती हूं, कितनी? थोड़ी थोड़ी हूं, पूरी नहीं, उसका कोई मतलब नहीं होता। कभी कभी आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक भी होता है, पता है? या तो कुछ मत जानो या पूरी तरह जान लो। आधा जानोगे तो अपना भी कबाड़ा होगा, वो ऐसा भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह गलत है, मगर बहुत डेंजरस हो जाता है। एक आदमी ग्रंथ पढ़ रहा था, और वो ग्रंथ गीता पढ़ रहा था, गीता नहीं, एक शास्त्र पढ़ रहा था। शास्त्रों पढ़ के उसने मंदिर आना बंद कर दिया। पंडित जी ने पूछा, क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया? उसने कहा, शास्त्रों में लिखा है मंदिर मत आओ। उसने कहा, वेल मैंने तो ऐसे कहीं नहीं पढ़ा। उसने कहा, मुझे दिखाओ कहाँ से पढ़ रहे हो। तो वो किताब लाया, उसमें लिखा था कि यस मंदिर मत आओ, वो आखिरी लाइन थी। तो उसने कहा, उसने आगे देखा, पेज खोल के उसमें आगे लिखा था चप्पल पहन के। इसको कहते हैं आधे अधूरा ज्ञान, बहुत खतरनाक है। इसलिए लोग गीता पढ़ते हैं और हमसे क्या बोलते हैं, हमने गीता पढ़ी है। गीता का सार क्या है, गीता का क्या उपदेश है? लोग कहते हैं गीता का उपदेश है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर ये एब्सोल्युटली गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये गीता सार में लगा रहता है नहीं। मैंने एक, आप जाएंगे स्टॉल पे, एक मैंने पोस्टर बनाया है जिसमें मैंने लिखा है गीता सार की तलवार। किताब मिल जाएगी अभी आपको, आप खरीद भी सकते हो। पोस्टर भी है वो, कि घर में लगा दो वो गीता सार के, गीता सार आपके घर में लगा होगा सबके, छोटा था, उसको उठा के फेंक दो, क्योंकि वो जिसने भी बनाया, मुझे नहीं पता किसने बनाया, मगर बिल्कुल गलत है। क्योंकि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो गीता में है ही नहीं। सो जब मैंने पहले पढ़ा था, जब मैं कॉलेज में था, मैंने, मुझे गीता नहीं आती थी, मैंने पढ़ा कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, मैंने कहा गलत है। अगर ये गीता में तो गीता गलत है, क्योंकि बिना फल की चिंता किए बिना कोई कर्म कर ही नहीं सकता। कैसे करोगे? कोई भी काम करने से पहले मैं तो सोचते हैं फल क्या मिलेगा। कोई बिजनेसमैन कर लेगा बिना फल की चिंता किए कर्म? नहीं हो सकता। सो मैंने कहा, वेल गीता में कृष्णा कह रहे हैं, और अगर सही में है तो गीता गलत है, मैं गीता कभी नहीं पढ़ूंगा। और अगर आप बड़े बड़े MBA कॉलेज में जाओगे तो वो लोग यही कहते हैं, तो आपकी गीता सही नहीं है, क्योंकि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो ये प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, गलत है। फिर हमने गीता पढ़ी, हमें समझ आया कि वेल कृष्णा कुछ और कह रहे हैं और लिखा कुछ और है। भगवान कह रहे हैं कर्मण्य वादे का रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। मा फलेशु कदाचन, मा का मतलब नहीं, फलेशु मतलब फल में, कदाचन मतलब कभी, कर्मण्य अब कर्मणि एवा अधिकार अस्ति, कर्म में ही अधिकार है, मा मतलब नहीं, फल में कभी नहीं है, बिल्कुल मतलब अलग है। फल की चिंता करो मगर फल पे अधिकार नहीं है तुम्हारा, समझे, फल पे मेरा अधिकार है, ये कृष्णा कह रहे हैं। फल लो, बिजनेस करो पैसे कमाने के लिए, वो तो पैसे नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, मगर पैसे का कुछ भाग मुझे दे दो, मेरा अधिकार है उस पर, ये भगवान समझा रहे हैं। सब हमने, इसलिए मैं बता रहा था कि बहुत कम लोगों ने गीता पढ़ी है, क्योंकि गीता पढ़ने के लिए एक प्रॉपर टीचर चाहिए, गुरु नहीं टीचर, क्योंकि अब मैं गुरु शब्द इस्तेमाल करूंगा आजकल तो गड़बड़ है, नहीं है, आजकल बहुत सारे गुरु हैं और बहुत सारे गुरु गिर भी रहे हैं, गलत निकल रहे हैं, स्कैंडल्स हो रहे हैं, तो अच्छा वर्ड नहीं है गुरु आजकल के उसमें परिप्रेक्ष्य में। शास्त्रों में गुरु मतलब होता है जो ज्ञान दे, शास्त्रों में गुरु नहीं होता जो सिर्फ आशीर्वाद दे, शास्त्रों में गुरु का मतलब है जो अच्छे शब्द नहीं बोले, मीठे शब्द लुभाने वाले, गुरु का मतलब है जो भारी शब्द बोले, गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का, गुरु वो है जो ऐसे शब्द बोले कि आपकी भ्रांतियां खत्म हो, आपका ज्ञान, संशय और विपरीत ज्ञान, गलत ज्ञान, उन वो तीनों कटे, उसको गुरु कहते हैं। सो असली गुरु वो है, और असली शिष्य कौन है, असली शिष्य वो है, असली श्रोता वो है जो इस ज्ञान को सुने और उसको समझने के प्रयास करे और फिर उसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करे। सुनो सबकी करो मन की, इस सिद्धांत से नहीं चले, वो प्रॉब्लम है। श्रवणम मननम निधि ध्यासनम, अभी जो आपने सुना है, मैं एक घंटे में आपको सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, मगर मैं इतना बता सकता हूं कि प्लीज गीता पढ़ लो, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप खुद गीता नहीं पढ़ोगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा मगर आपको समझ नहीं आएगा सही क्या गलत क्या है, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई कहेगा परमात्मा, कोई कहेगा भगवान, कोई कहेगा परब्रह्म, कोई कहेगा ज्योति, कोई कहेगा निराकार, कोई कहेगा साकार, कोई कहेगा कृष्णा, कोई कहेगा शिव, कोई कहेगा गणेश, कोई कहेगा दुर्गा, कहोगे क्या करें। फिर अंत में एक आदमी, एक गुरु आएगा, वो कहेगा कोई नहीं, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, अंत में ऐसा होगा। और जिसने गीता नहीं पढ़ी कहेंगे हाँ ठीक है, ये भी भगवान है, सभी भगवान है, ऐसा हो रहा है समाज में, समझे। और क्यों हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, मैं आपको ये बताने आया हूं, क्योंकि आप लोग यहां पे बैठे हो खाली, क्योंकि आप लोग समझते हो कि जीवन का लक्ष्य अपना जीवन चलाना, खाना पीना और काम करना, बस इतना ही, ये गलत है, जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, एटलीस्ट भारतीयों के जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। भारत भूमि ते मनुष्य जन जार, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है वो बहुत सौभाग्य है, क्योंकि इस देश को आर्यव्रत कहते थे, समझे, ये देश छोटा मोटा देश नहीं है, अगर बाहर अमेरिका और वहां चाइना में पैदा होते वो तो मलेच लोग हैं, वो तो घट, वैसे उनको हम ज्यादा बड़ा कहते हैं, अमेरिका चाइना सब अमेरिका भाग रहे हैं बच्चे, शास्त्रों में वो मलेच्छ हैं, वो कंप्लीट संस्कार नहीं है उनमें, कुछ ज्ञान नहीं है। भारत में जिसका जन्म, भारत में बहुत पुण्य से जन्म होता है क्योंकि पुण्य भूमि है, मगर इसलिए हर भारतीय कर्तव्य बनता है कि वो गीता को समझे और अपने जीवन में लगाए, नहीं दूसरों को भी दे, हमारा कर्तव्य है, शास्त्रों में लिखा है। भारत पहले पूरे संसार की राजधानी थी, जब पांडवों के समय युधिष्ठिर महाराज सिर्फ भारत के राजा नहीं थे, महाभारत था उस टाइम, महाभारत का युद्ध सुना है, महाभारत, महाभारत मतलब उसमें रशिया यूरोप सब आता था, इसको महाभारत कहते थे। आप महाभारत पढ़ के देखो कहां तक राज्य गया था इनका, और भारत का एकमात्र कर्तव्य था कि यहां से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, ये थे हमारे लोग। ऐसे नहीं कि उन लोगों से हम ज्ञान ले रहे हैं गलत पाश्चात्य देश से, मशीन बनाने का, आगे बढ़ने का, नहीं आगे मशीनों से नहीं बढ़ते, आगे हम बढ़ते हैं चरित्र से, आगे बढ़ा जाता है भगवान के ज्ञान से और गीता के ज्ञान से, आगे बढ़ा जाता है चेतना से, शरीर से नहीं, उसको आगे कहते हैं। भगवान खुद गीता में कह रहे हैं सभ्य पुरुष सभ्य व्यक्ति वो है जिसका आचरण, जिसकी वाणी और जिसके विचार सभ्य हो। सभ्य वो नहीं है जिसका सिर्फ घर बहुत अच्छा हो, उसको सभ्य नहीं कहते। एक सभ्य पुरुष झोपड़े में भी मिल सकता है, मगर महलों में जनरली असभ्य लोग ही रहते हैं, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य ही महल था बनाना। सो हम आपको ये बताने हैं, देखिए मैं प्रवचन तो कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा एक प्रवचन है हम सुनेंगे, अच्छा भगवान के बारे में चर्चा करना, मगर भगवान के बारे में चर्चा तो हम तब करेंगे जब आप लोग जागोगे। मेरे हिसाब से सो रहे हो आप सब, मेरे हिसाब से आप कोई जागे नहीं हो, क्योंकि कृष्णा खुद कह रहे हैं गीता में, वो क्या श्लोक है, योगी रात को जानता है, यस्याम जागृति सम्यम, हाँ क्या है, जो योगी है वो रात को जागता है और जो भोगी है वो सुबह जागता है। कृष्णा कह रहे हैं यस्य जागृति सम्यम्य, इसका मतलब क्या है, क्या हम लोग रात को जागते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है कि जो योगियों के लिए जो रात है वो भोगियों के लिए दिन होता है, और जो भोगियों के लिए दिन है वो योगियों के लिए रात है। कहने का मतलब है कि जो भक्त होते हैं उनके लिए इस संसार की जितनी भी चीजें हैं वो रात के समान है, उनके लिए उनको इंटरेस्ट नहीं होता इनमें। रात को हम सो जाते हैं, नहीं हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, सो रहे हैं। भगवान के भक्त होते हैं वो इस संसार में रहते हैं मगर सोए हुए होते हैं। हम भी चलते हैं, लोग भी चलते हैं, हम भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं, मगर हम ऐसे देख रहे हैं जैसे हम सपना देख रहे हैं, ठीक है फर्क नहीं पड़ता। हम इस संसार के लिए सोए हुए हैं मगर आध्यात्मिक जगत के लिए जागे हुए हैं। मगर जो भक्ति नहीं करता, जो गीता का ज्ञान, भक्ति नहीं करता मतलब जिसको गीता का ज्ञान नहीं है, मेरे अनुसार भक्ति नहीं कर, भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि मंदिर आ रहे हो, भगवान ये नहीं कह रहे, मंदिर आने वाला हर आदमी भक्त नहीं होता, मंदिर आने वाला हर आदमी पुण्यशाली हो सकता है मगर भक्त नहीं होता, उन दोनों में फर्क है। सो जो भक्त नहीं है वो व्यक्ति इस संसार के प्रति जागा हुआ है मगर आध्यात्मिक जगत के प्रति सोया हुआ है, कृष्णा ये समझा रहे हैं। सो आप सब सो रहे हो क्योंकि हमें भगवान और भगवान के जगत के बारे में अभी समझ नहीं आ रहा, अनुभव नहीं हो रहा। एक होता है पापी, एक होता है पुण्य और एक होता है भक्त। पापी तो होता है धर्म करता है, वो तो चलो यहां पे बैठा हुआ शायद लोग नहीं करते होंगे अधर्म, इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा। पुण्य दूसरा होता है पुण्य वाली, पुण्यशाली व्यक्ति, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, कृष्णा खुद कह रहे हैं ऊपर के लोकों में पुण्य लोग होते हैं। पुण्य लोग क्या है, पुण्य लोग अच्छा काम करते हैं, जैसे अभी आपने डोनेशन चढ़ाई यहां पर, ठीक है गुड, ये अच्छा काम है। मगर भक्त अलग है, एक पुण्यशाली भी यहां पर 10 रुपए चढ़ाएगा, एक भक्त भी हो सकता है 10 रुपए चढ़ाए, मगर उन दोनों में फर्क होगा। क्या फर्क होगा, पुण्यवान व्यक्ति के लिए मंदिर आना और पूजा करना अच्छा काम है, और वो मंदिर आता है और अपना पूजा करता है कितने टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए, क्योंकि अच्छा काम है। मगर भक्त के लिए भक्ति, मंदिर आना पूजा करना अच्छा काम नहीं है, वो जरूरी काम है, समझे। एक पुण्यशाली व्यक्ति के लिए ये पूजा अच्छा काम है मगर अपना संसारी काम वो जरूरी है। जरूरी और अच्छे काम में फर्क होता है। पुण्यशाली व्यक्ति के लिए ये सारी मंदिर वंदिर ये श्रेय है, ठीक है अच्छा है गुड, होना चाहिए कीर्तन होना चाहिए, मगर हम आपसे पूछा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आप कहोगे लक्ष्य भैया देखो जीवन का लक्ष्य, पहली बात तो इस क्वेश्चन का समझ ही नहीं आएगा मतलब लक्ष्य क्या होता है। मगर हम पूछेंगे आपके जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप कहोगे नहीं नहीं हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारी कार, हमारा बैंक बैलेंस, ये जरूरी नहीं है। बस यहीं पर फर्क हो गया, भक्त के लिए यही जरूरी है, बस भगवान की भक्ति, वो सारी चीजें अच्छा है, बाकी उसके लिए जीवन अच्छा होता है, वो हो ना हो चलता है, भक्ति होनी चाहिए, पुण्य पुण्यशाली व्यक्ति के लिए नहीं है। सो बिल्कुल उल्टा हो गया, फर्क नहीं हो गया। तो पापी तो नर्क जाते हैं, पुण्यवान स्वर्ग जाते हैं, मगर भक्त कहाँ जाते हैं? भक्त जाते हैं न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धामा परम मम। कृष्णा कह रहे हैं वो मेरे धाम आते हैं और वापस संसार में लौट के नहीं आते, क्योंकि इस संसार में अगर पाप पाप है तो पुण्य भी एक दृष्टि में पापी है। क्यों? क्योंकि बुरा काम तो इस संसार जन्म मृत्यु में फंसाता है, अच्छा काम भी संसार जन्म मृत्यु में फंसाता है, उससे भी आप कहीं नहीं जा रहे। सो अगर जेल में आप हो, अगर कैदी हो जेल में, और अगर जेल के कैदी हो और बेल यू हैव टू जस्ट कैच दिस गर्ल, वैसे क्या करोगे, बच्चों का क्या करेंगे? सो अगर आप कैदी हो जेल में तो क्या होगा? सो जेल में, तो जेल में भी तीन तरह के वो होते हैं, क्या कहते हैं, एक होता है सी, एक होता है गंदा, वो क्या कहते हैं, प्रिजन, प्रिजन जेल में भी अलग अलग तरह के कंपार्टमेंट हैं। एक बिल्कुल ही घटिया कैदियों के लिए होगा, एक अच्छा के लिए होगा, एक बहुत अच्छा होगा। वीआईपी वालों को जब जेल होती है, मिनिस्टर्स को जब जेल होती है, तो उनके लिए जेल में बहुत अच्छा रूम बनाते हैं, मगर वो फिर भी जेल में ही है। नहीं तो स्वर्ग भी एक तरह से जेल ही है, अगर नर्क जेल है, क्योंकि दोनों के दोनों एक भौतिक संसार में, दोनों में हम फंसे हुए हैं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं आठवें अध्याय में आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, अर्जुन ब्रह्मा के लोक से लेकर नीचे के लोकों तक सब जगह जन्म मृत्यु है। जब तक इस संसार में रहोगे तब तक प्रॉब्लम है, यहां पर कभी भी शांति नहीं मिलेगी आपको। थोड़े टाइम के लिए शांति हो सकती है, मगर परमानेंट शांति नहीं है यहां। सो आप कुछ भी कर लो, आप कभी भी सुख और शांति परमानेंटली नहीं हो सकते यहां पर, क्योंकि ये नित्य नहीं है आपका कुछ भी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जीवन की जरूरत है इस संसार से बाहर निकलना। ये गीता का उपदेश है, ये कितने लोगों को पता था? नहीं पता था। नहीं, हम तो सोच रहे थे गीता का उपदेश है सुख शांति, हम सोच रहे थे गीता का उपदेश है कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, हम सोच रहे थे गीता का उपदेश है थोड़ी पूजा कीर्तन। कृष्णा कह रहे हैं नो, गीता पढ़ना बहुत सीरियस जॉब है। सुबह उठते सबसे पहले गीता पढ़नी चाहिए, और सोते हुए भी गीता पढ़नी चाहिए, और गीता को अपने मंदिर में कभी मत रखना, वरना कभी नहीं पढ़ोगे आप, वो मंदिर में पड़ी रहती है, क्योंकि ग्रंथ है, नहीं ग्रंथ की पूजा होनी चाहिए, बस पढ़ना नहीं है ग्रंथ को कभी। पंजाब में तो ऐसी है नहीं ग्रंथ, वेल सिखिज्म में भी गुरु ग्रंथ साहिब है, मुझे नहीं लगता वहां पे कितने लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, कितने सिखों से पूछो, अपनी किताब नहीं पढ़ते वो लोग, छोटी छोटी किताबें होती हैं सुखमनि साहिब वो सब पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब बहुत कम लोगों ने पढ़ी है आजकल के जो सिख हैं। ऐसे हमने भी गीता पूजा करते हैं पढ़ते नहीं, मगर कृष्णा क्या कह रहे हैं गीता में, कृष्णा कह रहे हैं गीता की असली पूजा उसको पढ़ना। 18वें अध्याय पढ़ो आपने, जिसने गीता नहीं पढ़ी उसको पता नहीं गीता में क्या है। सो गीता को ग्रंथ मत समझो, गीता को अपना दोस्त समझो, समझे, दोस्त को अपने साथ रखा जाता है, मंदिर में नहीं रखा जाता। बल्कि गीता एक्चुअली शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती अगर शादी करनी है तो गीता से कर लो। इसलिए हम भी गृहस्थ हैं, हर ब्रह्मचारी हर सन्यासी गृहस्थ होता है, क्योंकि उसकी भी पत्नी होती है, और वो कौन है, वो गीता है, शास्त्र है। सो पत्नी को अपने साथ ही रखते हैं? नहीं, अपने साथ रखो, और कहाँ रहते हैं पत्नी, वाइफ हस्बैंड कहाँ रहते हैं, बेडरूम में, तो बेडरूम में गीता होनी चाहिए अपने पास, कभी भी लेटो कभी भी बैठो गीता लेके पढ़ ली, ये चिंता मत करो कि ये ग्रंथ है। बल्कि हम तो गीता लेके सोते हैं साथ में, एक तो ये जप माला लेके सोते हैं, साइड में रखी होती है, क्योंकि माला जप के लिए अच्छी होती है। नहीं, हम मन में भी जप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, मगर माला पे भी जप होनी चाहिए, क्योंकि माला से डिसिप्लिन रहता है, अनुशासन रहता है। कृष्णा खुद कह रहे हैं कि राग द्वेषा विमुक्तैस्तु विषयैर इन्द्रैश्चरण आत्मा वशैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। दूसरे अध्याय में अर्जुन मेरी भक्ति करो मगर अनुशासन से, नियमों में रहकर। बिना नियमों के अपने मन से चलते रहोगे तो मन से चलने वाला व्यक्ति तो भाई उसका एक्सीडेंट ही होता है, क्योंकि मन के रथ का कोई भरोसा नहीं है कब का मुड़ जाए। इसलिए माला रखते हैं, ठीक है, अब दो माला की, तीन माला की, कुछ कुछ पता लगता है हमारी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही। मन में तो आप कितने ही कर लो, आज एक एक कुछ पूजा करो, दूसरी पूजा करो, तीसरी पूजा करो, ओम जय जगदीश हरे सुख शांति घर आवे, यही गाते हैं ना सब लोग यहाँ पर, एटलीस्ट औरतें। पता नहीं आजकल क्या गाते हैं आरती, मुझे नहीं पता, जमाना चेंज हो गया है, आजकल कुछ और चेंज हो गया, इंटरनेट, आजकल तो इंटरनेट पे आरती होती है, देखा है आप लोगों ने, सॉफ्टवेयर आ चुका है कई लोग करते हैं ऑफिस में, वो प्रोग्राम है उसमें बटन दबाओगे भगवान की फोटो आ जाएगी, फिर वहां पे अगरबत्ती और सब पड़ा होगा, फिर बटन दबाओगे वो दीपक उठेगा और अपने आप घूमने लगेगा और आरती शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर बटन दबाओगे तो अगरबत्ती, फिर बटन दबाओगे तो फूल, आरती हो गई, हाँ जय हो भगवान जी की, फिर बटन दबाओगे सब गायब, अपना काम शुरू करो। आजकल ये हो गया, सब गड़बड़ हो चुकी है। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, सबको ज्ञान दो, बिना ज्ञान के कोई नहीं मानेगा, तभी ये अब इतना बड़ा मंदिर है, इतना अच्छा मंदिर है, सुंदर है, मगर लोग आते ही नहीं है। ये नहीं मंदिर, सभी मंदिर का ये हाल है, क्योंकि मंदिर हमें अब जरूरत है, मंदिर ईंट पत्थरों का बनाने का नहीं, अब जरूरत है मंदिर लोगों के हृदय में बनाना है, लोगों का हृदय खाली है, और उस मंदिर का निर्माण जो हृदय में होता है वो ईंटों से नहीं होता, वो ज्ञान से होता है, वो गीता के ज्ञान से होता है। सो गीता का लक्ष्य है इस संसार से बाहर जाना, संसार में सुख नहीं है। अगर आपको पहली बार पता लग रहा है ये, या आप बार बार सुन चुके हो ये, तो एक बार और सुन लो, इस संसार में सुख नहीं है, मगर हमें ऐसा लगता नहीं है, हमें लगता है संसार में बहुत सुख है, ठीक है बहुत नहीं थोड़ा सा तो है, मगर कृष्णा कह रहे हैं देखो अर्जुन इस संसार में सुख नहीं है का मतलब क्या है, कि सुख है मगर दुख बहुत ज्यादा है, उस दुख में सुख दिखाई नहीं देगा आपको, देखना। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है संसार में सुख नहीं है, यहां पे इतना दुख है, इतना दुख है, हर कदम पे दुख है, और वो दुख ऐसा नहीं कि किसके आपके घर में मर जाएगा कोई, छोटी छोटी बातों पे टेंशन है और प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई बात नहीं मान रहा आपकी वो दुखी है, सबको सही चल रहा है मच्छर ने काट लिया वो भी तो दुखी है क्या करोगे, गर्मी लग रही है सर्दी लग रही है वो भी दुख है, और सुख कितना है संसार में, क्या है थोड़ा खाने पीने का सुख, टीवी देखने का मजा आ गया, और वो सुख ऐसा है जो कि धीरे धीरे वो फिर खत्म भी हो जाएगा, बोर हो जाओगे, कितना टीवी देखोगे, कितना खाओगे, कितना फ्रेंड के साथ जाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं बुद्धिमान बनो और मेरी गीता से इस संसार को देखो, अपनी आंखों से मत देखो, अपनी आंखों से संसार को देखना होता है प्रत्यक्ष, अपनी आंखों से जो संसार को देखता है वो मूर्ख है, जो दूसरों की आंखों से देखता है, दूसरों की आंख मतलब शास्त्रों की आंखों से, शास्त्र चक्षु से, शास्त्र मतलब गीता से, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको विवेकी व्यक्ति कहते हैं, उसको कहते हैं हम परोक्ष ज्ञान, पर मतलब दूसरा, इक्ष मतलब आंखें। सो और जो व्यक्ति उस ज्ञान को अनुभव करता है और फिर इस संसार को देखता है उसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। गीता हमें अपरोक्ष ज्ञान देती है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं देती, हमें वो चीज बताती है गीता जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते, जो आप अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, वो ज्ञान गीता कृष्णा में दे रहे हैं। इस संसार के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसफर्स चाहे कितनी रिसर्च कर रहे हैं, भगवद गीता तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो असंभव है, क्योंकि भगवद गीता का वो ज्ञान है जो आपके इंद्रियों से परे, वो तो सीखना ही पड़ता है किसी से, बिना सीखे हम नहीं समझ सकते, क्योंकि गीता में अब आपको आपने गीता, मुझे नहीं लगता किसी ने गीता पढ़े, क्यों, क्योंकि गीता में पता है क्या है, गीता में भक्ति भी है, और मैं अलग अलग कॉलेज में जाता हूं अलग अलग वैज्ञानिकों से मिलता हूं और मैं उनको गीता ही पढ़ाता हूं और मैं उनको बोलता हूं गीता में मैथमेटिक्स भी है। आप कहोगे कहां है मैथमेटिक्स, गीता में पाइथागोरस थ्योरम है। अभी आपको बता देता हूं दूसरे अध्याय में, गीता में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस है दूसरे अध्याय में। आप कहोगे कहां है, ना सतो विद्यते भावो ना विद्यते सतो भवा। ये श्लोक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो था वो हमेशा से रहेगा, जो नहीं था वो कभी खत्म, वो कभी नहीं आ सकता। ये क्या है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। गीता में ये भी है, गीता में आयुर्वेद भी है पूरा छठे अध्याय में, युक्त आहार विहारस्य च युक्त चेष्ट सकर्मसौ युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भक्ति दुखा। ये एक श्लोक पूरा आयुर्वेद की नींव है, और चौदहवें अध्याय में तो भगवान ने पूरा आयुर्वेद ही बोल दिया। गीता में पूरे के पूरे केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, बम बनाया था सबसे पहला वो गीता पढ़ के बनाया था, समझे, ओपेनहाइमर, एटम बम, उसको प्रेरणा यहां से। अब वो बात है, उसने गीता पढ़ के गलत काम कर दिया, एटम बम बना दिया लोगों को मारने के लिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर अगर गीता बिना टीचर के पढ़ोगे या ढंग से नहीं पढ़ोगे तो गीता पढ़ के हम अधर्मी निकाल देंगे उसमें से। जैसे गंगा के किनारे रावण क्या था, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी तो था, वैदिक ज्ञानी पंडित, और क्या था, असुर। तो जरूरी नहीं है हर आदमी शास्त्र पढ़ने वाला अच्छा आदमी हो, वो असुर भी हो सकता है। कृष्णा खुद कह रहे हैं वो क्या श्लोक है, माया प्रतज्ञान आसुरम भावम आश्रित नमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। उसके बाद क्या अपना प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतज्ञान आसुरम भावम आश्रित। कृष्णा कह रहे हैं देखो अर्जुन, चार तरह के लोग मेरे पास कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे मेरे पास, कभी नहीं आएंगे। कौन? एक तो वो व्यक्ति जो बेवकूफ है, मूर्ख है। मूर्ख किसको समझते हैं आप, जो बोल नहीं सकता? नहीं, कृष्णा कह रहे हैं मूर्ख वो, हर व्यक्ति मूर्ख है जिसके जीवन का लक्ष्य भोग करना है। ये क्या हो रहा है, कैन यू जस्ट आस्क देम टू प्लीज स्टॉप स्पीकिंग। सो मूर्ख वो हर व्यक्ति है जो जिसका लक्ष्य भोग करना है। दूसरे शब्द में मूर्ख कृष्णा के अनुसार वो हर व्यक्ति है जिसके जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना है, बस। पैसे कमाना गलत नहीं है, मगर जीवन का लक्ष्य ही पैसे कमाना है। जिसका जीवन बस चार दीवारी के बीच में अपने दो बच्चे, अपना हस्बैंड, अपना किचन, या पति के लिए अपना टीवी, इतना ही है बस, खत्म, जीवन खत्म। चार दीवारी के बाद कुछ है ही नहीं उसके लिए, उसके बाद जो भी भाड़ में जाए वो मूर्ख है। ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान के पास नहीं आता। मंदिर आ सकता है मगर भगवान के पास नहीं आएगा, मंदिर आना अलग होता है। यहां तक भी आ जाओ, अब यहां पे भी बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, फिर भी हो सकता है भगवान के पास नहीं हो, क्योंकि यहां सिर्फ चित्र के पास बैठने से भगवान के पास नहीं होते, भगवान के पास यहां से हुआ जाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। आप लोग को सुनाई दे रही है मेरी आवाज पीछे सुनाई दे रही है? ओके गुड, चलने दो फिर। वो मूर्ख है। मूर्ख के लिए अपना घर अपना होता है, मगर बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, एक भक्त के लिए पूरा संसार ही उसका घर है। वासुदेवे कुटुंबिकम, सुना है नहीं सुना है? सुना है नहीं, सबने सुना है मगर माना नहीं, समझा नहीं। ये व्यक्ति कभी नहीं आएगा क्योंकि वो घर में बंद है अपने, वो क्यों आएगा यहां? आप यहां पे बैठे हो, आधे लोगों का मन तो अपने घर में होगा, कब जाना है, क्या करना है, कैसे होगा, गैस कैसे आएगी, क्या होगा, वो होगा, हजार चीजें होती हैं। कृष्णा कह रहे हैं नहीं आ सकता वो। दूसरा आदमी है माम दुष्कृत मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। नराधम नहीं आएगा भगवान के पास। नराधम वो होता है जो व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद भी नहीं समझता, सब कुछ सुन लिया, हजार बार सुन लिया, फिर भी बुद्धि में कुछ घुस ही नहीं रहा, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि बंद की होती है। वो सोचता है ठीक है, चल रहा है सब, स्वामी जी को बोलने दो, ठीक है हम अपने ही करेंगे, ठीक है बस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते इस जीवन में। कुछ लोग ऐसा सोच के बैठ जाते हैं, भैया हम तो साधारण लोग हैं, हम महान नहीं हैं, ये तो महान है, इन्होंने तो घर छोड़ दिया, ये कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, ये बेवकूफ़ी है। भगवान ने गीता हमारे लिए नहीं बोली थी, भगवान ने गीता सबके लिए बोली है। अगर ऐसी बात होती तो हम आपको क्यों बताते? तो वो नहीं आ सकता, अगर आप ऐसी पहले सोच के बैठ जाओगे तो नहीं आ सकते। और तीसरा व्यक्ति है माया प्रत्यज्ञाना, जिसकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो नहीं आ सकता। जैसे साइंटिस्ट, तो हम साइंटिस्ट को बहुत बड़ा मानते हैं, मगर कृष्ण के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट मतलब उनकी बुद्धि माया ने हर ली है। विज्ञान पढ़ पढ़ के वो भगवान को पिक्चर से हटा देते हैं। नहीं, आजकल सारे वैज्ञानिक जनरली नास्तिक है, नास्तिक भी नहीं है तो आस्तिक भी नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं पहले भगवान को प्रूफ करो, प्रूफ में बिलीव करते हैं, नहीं पहले दिखाओ तब मानेंगे। वो तो ऐसे कहते हैं जैसे उनको हर चीज दिखाई दे रही है, नहीं हमें हर चीज तो दिखाई नहीं देती। आपको फोन की जो तरंगें कहाँ दिखाई दे रही है, फोन आता है नहीं आता है, तो वे कैसे कहाँ है? तो भगवान तो उस तरंगों से भी सूक्ष्म है, ऐसे कैसे दिखाई दे जाएगा? बिना ट्रेनिंग के नहीं दिखाई देगा। सो वो एक वैज्ञानिक होते हैं, हमें दिखाओ तब मानेंगे, प्रूफ दो तब मानेंगे, क्यों प्रूफ दें तुम्हें? तो वैज्ञानिकों ने अपना मन देखा है? किसी ने? आप लोगों ने देखा अपना मन? कभी नहीं देखा ना, तो है ही नहीं आपका मन, है ना? विज्ञान के अकॉर्डिंग आपका मन नहीं है। विज्ञान कहते हैं माइंड नहीं होता, सब कुछ ब्रेन है। जिसका मन नहीं होता वो कौन होता है? वो पागल होते हैं। नहीं, विज्ञानों के पास इतनी भी बुद्धि नहीं है ये समझने के लिए कि मन है, वो मन का भी प्रूफ मानते हैं। नहीं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को क्या बोलना चाहिए? पहले प्रूफ करो दर्द हो रहा है तब मानूंगा। ऐसा होता है कभी? वो मान लेता है, हाँ भाई दर्द हो रहा है मैं मान रहा हूं। तो ऐसे ही भगवान भी है, भगवान है पहले मान लो, फिर उसके बाद जब शिक्षा लोगे, जब भगवान का नाम लोगे, जब शुद्ध हो गए, तो धीरे धीरे चीजें दिखाई देंगी। जब चश्मा नहीं लगाते तो कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं, जिनको चश्मा पता है उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं, जिनको चश्मा नहीं पता उनको समझ ही नहीं आएगा। सो जिनको चश्मा लगाए उनको फायदा है नहीं, मेरी बात समझ आ जाएगी। तो जब चश्मा उतार के देखो कुछ दिखाई नहीं देगा, सबको धुंधला दिखाई देगा। तो क्या इसका मतलब सबको धुंधला हो गया, मेरी आंखें खराब है, मगर जब चश्मा लगाऊंगा तब दिखाई देगा। उसी प्रकार हमें भगवान नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब नहीं है भगवान नहीं है, इसका मतलब है आपकी आंखों में प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या आंखों में गीता का ज्ञान नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए हमें सिर्फ फोटो दिखाई दे रहे हैं मगर कृष्णा नहीं दिखाई दे रहे, प्रॉब्लम यहां पर है। तो वो नहीं आएगा। तीसरा चौथा व्यक्ति जो मैं बता रहा था, असुर। असुर पता है कौन है? कृष्णा कह रहे हैं, मजे की बात है, कृष्णा कह रहे हैं असुर वो है जिसको सारा ज्ञान है, असुर वो है जिसको सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मगर वो सारा ज्ञान लेके भी जहर उगलता है। जैसे गंगा के पास अगर पेड़ हो, एक आम का और एक नीम का, दोनों ही गंगा का जल लेंगे, पवित्र जल, मगर एक क्या उत्पन्न करेगा? कड़वा नीम का फल, एक करेगा मीठा आम, मगर दोनों ही किसका जल ले रहे हैं? गंगा जी। उसी प्रकार असुर भी पढ़ते हैं गीता शास्त्र और भक्त भी पढ़ते हैं, मगर भक्त उस शास्त्रों के गंगा रूपी अमृत से अमृत निकालते हैं, गंगा शास्त्र रूपी गंगा से, मगर असुर उस शास्त्र रूपी गंगा से जहर निकालते हैं। रावण ने कहा मारो राम को, क्या हुआ? हिरण्यकशिपु को भी वेद पता थे, हिरण्यकशिपु पता है कौन था? प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान को मार दिया, और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। सबसे पहले तो उनके भगवान ने हिरण्यकशिपु के बड़े भाई को मारा था, हिरण्याक्ष, वराहदेव में, वराह के अवतार में। तो जब उसके बड़ा भाई मर गया, हिरण्यकशिपु आया और उसकी माँ रो रही थी, उसकी पत्नी रो रही थी, हिरण्यकशिपु ने आके बोला देखो चिंता डरो मत, सब आत्मा है, शरीर नहीं है। हिरण्यकशिपु असुर है और वो दे रहा है आत्मज्ञान, शास पढ़ा रहा था वहां पर। सो इसलिए जरूरी नहीं हर आदमी गीता पढ़ ले तो वो भक्त है, हो सकता है पुण्यवान भी नहीं हो, हो सकता है पापी भी नहीं हो, हो सकता है असुर हो। अजीब सा लग रहा है सुनने में आपको, मगर इसको कहते हैं गीता का ज्ञान। क्योंकि हम हो सकते हैं असुर नहीं हो, मगर हो सकते हैं हमारे में आसुरी प्रवृत्तियां हो, समझे? दोनों में अलग होता है। हो सकता है बाहर से नहीं हो हम असुर, हो सकता है हम गंदे नहीं हो मगर हमें गंदगी हो सकता है हम असुर नहीं हो मगर हमें असुरत्व हो, आसुरी प्रवृत्तियां, और वो है सब में। रावण तो बाहर से भी कामी था, अंदर से भी कामी। हम हो सकता है बाहर से नहीं है मगर अंदर से तो है ना। तो सतयुग में, त्रेता में असुर बाहर थे, मैं कलयुग में असुर अंदर है, समझे? बाहर नहीं है, सब अंदर ही घुस गए सबके। क्योंकि त्रेता सतयुग में लोगों ने सोचा, असुरों ने सोचा, भैया भगवान हमें मार देते हैं, हमें देख लेते हैं, सब हम टेक्निक चलते हैं, कलयुग में हम सबके अंदर ही घुस जाएंगे, अब मार लो, अब भगवान मार लो आप। इसलिए गरुड़ पुराण में लिखा है कि जितने भी असुर थे सब लोगों ने प्लानिंग की कि हम लोग कलयुग में लोगों के अंदर ही चले जाएंगे, और स्पेशली ब्राह्मणों के अंदर। ऐसा भी है। सो गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो असुर हैं बहुत सारे ब्राह्मण के रूप में पैदा होंगे। हर ब्राह्मण गलत नहीं है, मगर कई ब्राह्मण असुर पैदा होते हैं, और फिर वो शास्त्र पढ़ते हैं, गलत प्रचार करते हैं, और सब कबाड़ा हो जाता है। सो इस चीज सबको रोकने का तरीका एक ही है, कृपा करके आप लोग पढ़िए गीता, और कुछ नहीं हो सकता। हम नहीं आपको पढ़ा सकते, हम खिचड़ी बना के दे सकते हैं, खाना आपको पड़ेगा, और आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपकी लाइफ वेस्ट है। कोई भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी अगर यहाँ पे आ जाएंगे, भगवान भी आपसे कहेंगे भैया पढ़ लो। भगवान भी जादू नहीं करते, जादू से नहीं समझ आता था कुछ कि आशीर्वाद देंगे तो। आशीर्वाद यही है, भगवान का प्रसाद यही है, मुखा प्रसाद। ज्ञान ही भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद है, जो भगवान अपने साधुओं, अपने भक्तों के द्वारा देते हैं दूसरों को, यही असली प्रसाद होता है। हमें ये लेने का प्रयास करना चाहिए। सो आज आप लोग प्लीज ये गीता खरीद सकते हो, यहाँ मिल रही है। प्रहलाद प्रभु, कैन यू ब्रिंग दोस सेट? टेल बलराम टू ब्रिंग दैट सेट, आई जस्ट अनाउंस। सो या, कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछना है किसी को, कुछ कहना है? या गीता का नाम गीता क्यों है? ओके, गुड क्वेश्चन। गीता का नाम गीता क्यों है? गीता को वैसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, पूरा नाम ही है नहीं। सो गीता जो शब्द है, गीता स्त्रीलिंग है, संस्कृत पढ़ेंगे ना तो पुलिंग के लिए होता है बालम, सॉरी नपुंसकलिंग के लिए, पुलिंग के लिए होता है बालह, स्त्रीलिंग के लिए होता है सीता, आ। सो गीता स्त्रीलिंग शब्द है, क्यों? क्योंकि गीता उस माँ की तरह है जो अपने बच्चों को व्यवहार और विचार सिखाती। सो गीता उस माँ की तरह है जो अपने भक्तों को ज्ञान देती है, जो भगवान कृष्ण के भक्तों को ज्ञान देती है, और हर पद पद पे जीवन के उनको डायरेक्शन देती है, लॉ देती है, क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए गीता का नाम गीता स्त्रीलिंग में है, ये मैं बता रहा हूं। अब क्वेश्चन है कि गीता का नाम गीता है क्यों? नहीं, गीता का मतलब होता है गान, गाना, गीता मतलब गाना। सो ये कृष्णा ने इसको गीता इसलिए कहते हैं क्योंकि गीता को पढ़ना नहीं चाहिए, गीता को क्या करना चाहिए? गाना चाहिए। अब गाना का मतलब ये नहीं कि म्यूजिक लगा के गाते रहो, वो भी गा सकते हो, अच्छा है, हम गाते हैं। एक आज के दिन हम पूरी गीता, 2 घंटे लगते हैं, हम गाते हैं अच्छी तरह, उसको कहते हैं पारायण। दक्षिण भारत में सिस्टम है गाना, मगर गाने, गाना क्या होता है, गाना हम बार बार गाते हैं, नहीं पढ़ते एक बार है, इसलिए भगवान इसका नाम गीता रखा कि बार बार बोलो। और गाने को क्या करते हैं, हम चलते फिरते भी मन में गाते रहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं भैया ये याद करो, चलते फिरते भी मन में बोलते रहो, सोचते रहो, श्लोकों को स्मरण करते रहो, उसका मतलब सोच ध्यान करते रहो, नहीं ये गीता, इसलिए गीता का नाम रखा है। और श्रीमद् का मतलब, और भगवत गीता मतलब जो भगवान ने बोली है गीता, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में 700 गीताएं, समझे? अभी तो आपको यही नहीं पता, मगर अभी आप जाओ तो एक होती है गीता, अष्टावक्र गीता भी है, सुना होगा आपने, अगर अष्टावक्र गीता यूपी में जाओगे वहां पे मिलेगी, आप एमपी में जाओ वहां पे गणेश गीता मिलेगी, अब वो पता नहीं किसने लिखी है, भगवान जाने। उस गीता में गणेश अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, गणेश जी कहां से आ गए अर्जुन को उपदेश देने वाले, मुझे समझ नहीं आया आज तक दुनिया में, बट लोगों ने बना रखी अपनी अपनी गीता गणेश गीता। एक गीता है वियोग गीता जो महात्मा गांधी जी ने लिखी है, उन्होंने अपनी अपनी गीता लिखी है, पता नहीं, वेल मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बट एक गीता है, अगर राजस्थान में जाओगे और बिहार साइड में जाओगे तो वहां पे गीता गुरु गीता, उस गीता में गुरु भगवान है। तो ये मैंने कुछ सैंपल बताए आपको, ऐसी कई तरीके की गीता है। अब उन गीताओं से अलग रखने के लिए इसलिए इसका नाम क्या रखा है, भगवत गीता। भैया वो सारी गीताएं पता नहीं क्या करा है, ये गीता तो भगवान ने बोली है। भगवत मतलब भगवान, भगवान कौन है, कृष्ण। मगर इसके साथ शब्द लगा है श्रीमद, श्रीमद होता है, मद मतलब होता है ब्यूटीफुल, ये गीता बहुत सुंदर है। अगर आप ये गीता पढ़ोगे तो आप भी सुंदर बन जाओगे, आपके विचार, आपका व्यवहार, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा, क्योंकि आपके जीवन में कृष्ण आ जाएंगे, भक्ति आ जाएगी। और श्री, श्री मतलब होता है श्री के कई मतलब है, श्री का एक मतलब है कि ऐश्वर्य, महान है गीता। श्री का मतलब होता है महान, सिर्फ सुंदर ही नहीं है महान भी है। महान इसलिए क्योंकि इसके 700 श्लोक 18 अध्यायों में सारे वेद का ज्ञान है, सारे वेद का ज्ञान है, इसलिए महान है ये। और श्री का एक और मतलब होता है लक्ष्मी या राधा। अब अगर आप राजस्थान जाओगे तो वहां पे राधा रानी को बोलते हैं श्री, श्री जी, श्री जी, सुना है निम्बार्क संप्रदाय में श्री जी बोलते हैं, या ठाकुरानी बोलते हैं राजस्थान में, या स्वामिनी बोलते हैं यूपी में। सो श्री होता है लक्ष्मी या राधा, इसलिए क्योंकि कृष्णा कभी राधा के बिना नहीं होते, इसलिए गीता उनकी वाणी भी कभी राधा के बिना नहीं होती, इसलिए यहाँ पे श्री लगाया, श्री मद भगवत गीता। ये मैंने शॉर्ट में बताया है। सो अगर आपको और जानना है तो हमारे सेंटर में आओ, राजपुरा में आना पड़ेगा, तो वहां पे, और या वैसे मैंने लेक्चर भी दिया, मैं एक सीडी हमारी ये ले सकते हो, एक सीडी देना, या भगवत गीता पे, एक भगवत गीता एक लॉ बुक, इसमें मैंने सब गीता के बारे में बताया है। सो भगवत गीता के नाम पे ही हम 6-7 घंटे डिस्कशन कर सकते हैं कि क्यों नाम रखा है भगवत गीता। सो इट टेक्स टाइम, बट शॉर्ट में ये आंसर है। ओके और कोई क्वेश्चन है किसी का, कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चंस? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो क्योंकि हरे कृष्णा, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब प्रोग्राम होगा कब नहीं होगा, हमें नहीं पता। अच्छा साधु संघ बहुत मुश्किल होता है, पता है, लव मात्रा साधु संघ, एक क्षण भी साधु संघ मिलना बहुत बड़ी बात है। और मैं नहीं कह रहा मैं साधु हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं, इस बात की श्योरिटी है कि जो मैं बता रहा हूं वो गीता से बता रहा हूं, और आपको गीता से बोल रहा हूं, क्योंकि और किसी शास्त्र से बोलने का कोई बोल सकते हो, मगर मैंने पहले बताया गीता सार है, और जो भी मैं बता रहा हूं उसका प्रमाण भी दे रहा हूं, क्योंकि अपने मन से बोलने की आदत मुझे नहीं है, वो और गुरुओं को होती है, मुझे नहीं है, क्योंकि हमारे हमारे मत की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, वैल्यू किसकी है, भगवान के मत की, अदरवाइज सब अपने अपने, सब एक 19-20 का फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। मैं ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हो, मगर हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क बस इतना है मुझे गीता का थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, मैंने पढ़ा है थोड़ा ज्यादा सीरियसली, और आप लोगों ने सीरियसली नहीं पढ़ा, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है, और ड्रेस का फर्क है। सो अदरवाइज अगर आप भी पढ़ोगे गीता अच्छी तरह तो आप भी उतने ही महान बन जाओगे जितने और साधु होते हैं। दैट्स द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? ओके सो वेल, हम लोग मैंने बताया था इस महीने में गीता बोली जाती है, भगवान कृष्ण ने बोली अर्जुन को, और इस महीने में गीता लेना और पढ़ना समझना बहुत अच्छा है, तो आप ये गीता ले सकते हैं स्टॉल से, आपके पास गीता होगी, मगर अगर ये गीता नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले, क्योंकि जो इस गीता में श्लोकों का मतलब समझा है, जैसे मैं समझा रहा हूँ साधारण भाषा में, वैसे इसमें व्याख्या है। जनरली लोग गीता पढ़ते हैं कहते हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुश्किल होती है, तो इसमें व्याख्या है, तात्पर्य है। संस्कृत का हर एक शब्द है, जाके देखना आप, तो इसका हर एक श्लोक आप रोज पढ़ सकते हो, इसको रखो। और मगर फायदा यह है कि हम इस महीने में कुछ चीज गिफ्ट दे रहे हैं इसके साथ, तो आप लोग वो ले सकते हो। तो इस किताब के साथ ये भी किताब फ्री है, ये जो मैंने किताब बताई थी गीता सार की तलवार। सो आप ये पढ़ने से पहले ये पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि पहले जो भ्रांतियां वो खत्म होगी मन की। सो ये किताब इसके साथ फ्री है। और ये भी मैंने किताब लिखी गुरु कौन, कि गुरु कौन है, वेल असली गुरु कौन है, झूठा गुरु कौन है, असली शिष्य कौन है, झूठा शिष्य कौन है, भक्ति कैसे करनी है, भक्ति क्या होती है, ये किताब भी इसके साथ फ्री है। सो वेल हमने ये सेट रखा है, एंड यू कैन टेक दिस स्टीकर, दिस इज ऑल्सो, ये भी इसी के साथ है, तो आप ये ले सकते हो। और ये पोस्टर भी गीता सार की तलवार, ये अपने घर में लगा सकते हो, ये भी इसी के साथ गीता के साथ फ्री है। सो आप लोग ये सारी चीजें ले सकते हो। हमने सोचा कि इस महीने गीता लेना अच्छा है, तो हमने सोचा कि ये सब फ्री दे देते हैं इसके साथ, सो अच्छा रहेगा। सो कोई गीता लेगा सो ये सारी चीजें उसके साथ मिल सकती हैं, आप लोग खरीदिए। और ओ ये बंद नहीं हुआ, ठीक है। और ये दो सीडीज हैं, कुछ सीडीज भी आप लोग ले सकते हो प्रवचन जिसको सुनने हैं, वो भी बाहर से मिल जाएंगी। और बहुत सारी बुक्स हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत सारी छोटी छोटी किताबें हैं, किसी को चाहिए होंगी तो वो भी बाहर से ले सकते हैं। वेल ठीक है, ये किताब है आत्म साक्षात्कार विज्ञान, ये भी बाहर मिल रही है, आप लोग ले सकते हैं। That's it. ठीक है, ये भी तो बुक है।